तफसीर देखेंगे हम आयत नंबर 83 से। वयसअलूनक अन ذل قرنین قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا। और आपसे ذوالقرنین का वाक्या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे और वो एक राह के पीछे लगा। यहाँ से सबक का आगाज़ भी है और अगले वाक्य का आगाज़ भी है। सबसे पहला लफ्ज़ साइट में वाव, वाह। ये वाव अत्फ की वाव है। अत्फ क्या होता है? जो किसी बात को पिछली बात से मिलाए। और उर्दू में भी ऐसे ही होता है, कोई बात करते हुए हम वाव करते हैं, यानी ये हुआ और फिर ऐसा भी हुआ, तो बात समझ में आ जाती है कि ये बात पीछे से ताल्लुक रखती है। लेकिन अगर बैठे बैठे कोई शख्स किसी बात को शुरू करे और कह दे कि और फिर ये हुआ, फौरन सवाल आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। तो यहाँ इस वाव पे भी मुफस्सरीन ने बात की और वो कहते हैं कि इस वाव से ये साबित होता है कि ये वाक्या भी मुशरिकीन मक्का के उन्हीं तीन सवालों में से एक सवाल के जवाब में नाजिल हुआ था जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। तो इसका ताल्लुक पिछले किस्से से है, यानी कि मूसा और हिजर का किस्सा तो लोगों ने सुन लिया, दूसरे सवाल का जवाब तो उनको मिल गया, अब तीसरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये छोटे छोटे नुक्ते सामने लाने का मकसद क्या होता है कि हम कुरान पाक के बारे में इस चीज़ में कितने यकीन से कह सकते हैं कि यहाँ एक ज़बर और एक ज़ेर भी ऐसी नहीं कि जो कम हो या ज़्यादा हो। तो फिर जब अल्लाह ताला के इस कलाम में कोई कमी बेशी नहीं तो हम में से कोई तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला की इस किताब की हिफाजत करने के दावे की सच्चाई का ये सबूत भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आगे से वाक्य शुरू होता है यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन करते हैं? मुशरिकीन मक्का। अक्सर सवालात सहाबा कराम के किए हुए थे, लेकिन कुछ सवालात मुशरिकीन मक्का के किए हुए भी थे जिनका जवाब कुरान पाक में दिया गया। और तकरीबन 12 के करीब सवाल पूछे गए जिनका जवाब यसअलूनका से दिया गया। आपसे पूछते हैं का कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके बारे में पूछते हैं? अन ذل قرنین, ذوالقرنین के बारे में। ज़ू जो था वो ज़ी बन गया, असल में ये ज़ू ही था, अन ने कुछ असर दिखा दिया, तो ذوالقرنین के बारे में आपसे सवाल करते हैं। मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ذوالقرنین कौन था। और यही वो सवाल है जो हमारे जहनों में भी आएगा कि ذوالقرنین कौन था, क्योंकि जब तक किसी के बारे में पता ना हो कि वो कौन था तो उसकी कहानी सुनने का भी मज़ा नहीं आता, जहन का इस्तराब दूर होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बात है कि कौन था? कुरान पाक ने तो बस इतना ही कह दिया जो इस वाक्य में हम पढ़ेंगे कि ये कोई बादशाह था, अल्लाह ताला ने इसको बहुत असबाब दिए, दुनिया में इसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके इंसानियत की फलाह और बहबूद के काम किए, और रहती दुनिया तक के बादशाहों और हुक्मरानों के लिए एक सिंबल बन गया इस बात का कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया की चीज़ें जो हैं वो इंसान को गलत चीज़ों पे ही ले जाएं और दौलत का नशा इंसान को ऐसा बना दे कि दूसरे लोगों के हकूक़ को भी पामाल करे। लेकिन हकीकत में ये कौन किरदार था इसके बारे में यकीनी बात तो कोई नहीं कही जा सकती। हाँ, इतना लगता है कि यहूद को इसके बारे में कुछ इल्म था और इस बादशाह का जिक्र इन किताबों में भी मौजूद था, और इसीलिए उन्होंने मुशरिकीन मक्का को इस चीज़ पे माइल किया कि आप जाइए और ये सवाल पूछ के आइए। सही रिवायात से और कुरान पाक से जो मालूम होता है वो यही है कि ये एक नामवर बादशाह था, अल्लाह से डरने वाला था,
और मुनसिफ मिजाज था, और अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में बहुत वसअत दे रखी थी। इसका अगर लफ्ज़ी माना देखे जाए तो ज़ू का मानी होता है वाला, और करनैन दो सींग, दो सींगों वाला। क्या वाकई इसके सर पे सींग थे, या इसको सींगों वाला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें तफासीर में मिलती हैं। बाज़ ने तो कहा कि इसके सर पे दो गदूदें फूली हुई थीं जो देखने में सींग लगती थीं। कुछ ने कहा कि ये दुनिया के दो किनारों पे हुकूमत करता था, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन कहते थे, यानी मशरिक़ और मगरिब के दो किनारों तक पहुंचा और सूरज के जो करण थे यानी उसकी शुआ का मुशाहिदा किया। इसी तरह एक तीसरी राय इसके बारे में आती है कि इसके सर पर बालों की दो लटें थीं, करण बालों की लट को भी कहते हैं, तो गोया के दो लटों वाला या दो मीढ़ियों वाला, दो जुल्फों वाला। अब हकीकत में ये कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर रूमी था, क्योंकि इसकी फतुहात का दायरा जो था वो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था। लेकिन आज के दौर के जो मुफस्सरीन हैं वो रिसर्च करके कहते हैं कि ये उसका नाम नहीं था, क्योंकि जो बातें उसमें थीं वो इसमें नहीं पाई जाती। और वो कौन था, कैसा था, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरे इस रुकू में से हम देखेंगे कि इसकी शख्सियत के हवाले से हमें जो पता चलती हैं वो क्या हैं। पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा फरमाबरदार और फातह था, कि जिसकी सल्तनत या जिसका कंट्री मशरिक शमाल जनूब यानी बहुत दूर तक फैला हुआ था। फिर दूसरी बात यह है कि ये वो हुक्मरान था कि जिसने याजूज और माजूज के हमलों से बचने के लिए किसी पहाड़ी दर्रे पर एक दीवार बनाई थी। अगली बात इसकी शख्सियत के बारे में जो हमें पता चलेगी इस रुकू से वो क्या है कि वो खुदा परस्त और आदिल हुक्मरान था, क्योंकि कुरान पाक में इसका तذکرہ आ रहा है। और ये भी पता चलता है कि उसने अपने असबाब को इंसानियत की तबाही के लिए नहीं बल्कि इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। तो देखते हैं आयतों के साथ साथ चलते हुए कि आखिर इसकी क्या खूबियाँ जो हैं वो हमें दिखती हैं, और फिर उसकी रोशनी में हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी तारीख़ को आप खोल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। किसी के बारे में इतना जानना कि वो क्या था, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क इससे पड़ता है कि उसने क्या किया। और चूँकि कुरान पाक का मिजाज तज़कीर और नसीहत का है, जो वाक़यात भी बयान किए गए वो भी इसीलिए किए गए, तो उसकी वजह से फिर हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला अमल के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। फरमाया वयसअलूनक अन ज़िलकरनैन, ये आपसे ज़ुलकरनैन के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछते थे? कोई शौक नहीं था, लेकिन इस पूछने के पीछे आपको छोटा करना था। आपकी नबूवत का इम्तिहान लेना चाहते थे, आपके इल्म का इम्तिहान लेना चाहते थे। ये सोचते थे कि ज़रा देखें तो सही, टेस्ट तो करें कि ये कैसे हैं। मुशरिकीन के इस सवाल पूछने के अंदाज़ से भी अमल की एक बात हमारे लिए है, और वो क्या कि पूछा जाने वाला हर सवाल ज़रूरी नहीं कि इल्म हासिल करने के लिए हो। बाज़ सवालात इस तरह के होते हैं जो मुकाबिल जो है उसके इल्मी लेवल को परखने के लिए होते हैं, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज मालूम करने के लिए होते हैं, और बाज़ सवालात तो बेबस करने के लिए होते हैं कि देखते हैं भला इसका कौन जवाब देता है। यानी बाज़ सवाल हराने के लिए होते हैं, उसका दर्जा घटाने के लिए होते हैं, जैसा कि यहाँ भी दिख रहा है। इनका ख्याल जाता कि अल्लाह के नबी इन बातों का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? कुल, आप कह दीजिए, सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, अन करीब मैं पढ़ूंगा तुम पे इसका ज़िक्र, मैं तुम्हारे सामने इनका ज़िक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए ये बात कह दी कि ये आपके बारे में ये गुमान करते हैं कि आपको ये नहीं पता, तो हम बताएंगे कि वो कौन थे। और अतलू वही है जो पीछे भी गुजर गया, तला यतलू तिलवन से, तिलावतुन पीछे आए थे ना, वतलू माओहिया। तो यहाँ भी यही बात है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, क्या ज़िक्र होगा? लफ्ज़ ज़िक्र यहाँ काबिल गौर है, ख़बर नहीं कहा, ज़िक्र कहा गया। और ज़िक्र कहते हैं नसीहत वाली बात को, तज़कीर, अल्लाह के कलाम से नसीहत को पाना। इससे पता चलता है कि ज़ुल्करनैन का किस्सा भी यहाँ कोई अलिफ लैलवी कहानी के तौर पे नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि इसमें से नसीहत लेने के लिए इसको बयान किया जा रहा है। और किसी भी वाक्य के कोट करने का सबसे खूबसूरत तरीका और उसकी वजह ही ये होती है कि उससे नसीहत ली जाए। अब यहाँ पे शुरू होती है बात, क्या इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्थ, हमने जगह दी उसको ज़मीन में। मक्कन्ना मक्का, अब देखिए कि मक्कन्ना से है, मकाना से मक्कन्ना, मक्कन्ना युमक्किनु तमकीन, किसी को जगह देना, यहाँ इक्तदार के मानों में है। पीछे भी कुरान पाक में इसी मफहूम में ये बात आई है कि यानी वो बादशाह था, इससे मुराद उस इंसान की जगह नहीं बल्कि उसकी हुकूमत की प्लेस है। कहाँ उसको जगह दी? ज़मीन में दी, सभी को ज़मीन में दी जाती है। फिर यहाँ फिल अर्थ क्यों आया? तो देखिए कि सूरत यूसुफ में भी आप पढ़ चुके हैं कि जब मिस्र के ख़जानों की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वहाँ बसने की बात हुई तो वहाँ भी फिल अर्द की बात आई। आम अंदाज है, लेकिन इसमें हिकमत की एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला दुनिया में किसी को जितना मर्ज़ी इक्तदार दे दे, जितना मर्ज़ी रकबा उसके अंडर कर दे, लेकिन होता वो ज़मीन पर ही है। आज भी देखिए ज़मीन पे तो हज़ारों मुल्क होंगे, शायद हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो ज़रूर ही होंगे ना, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा नहीं कि जो आसमानों पे बसा हो। कि चलो दुनिया में तो बहुत हो गया, हम आसमानों पे चलते हैं, वो वहाँ उसी बादशाह की हुकूमत है जिसका ज़मीन और आसमान सब कुछ है। तो गोया कि एक इशारा कर दिया कि उसको जितना कुछ भी मिला, लेकिन किसी इंसान को जो ज़्यादा से ज़्यादा बादशाहत मिल सकती है फिर वो ज़मीन ही की मिल सकती है। और अगर वो वहाँ पे अदल और इंसाफ कायम कर लेता है तो फिर उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद भी की जाती है। तो फरमाया कि हमने उसको ज़मीन में इक्तदार बख्शा, वह आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और उसे हर तरह का साजो सामान भी दे दिया था। हर तरह का साजो सामान यानी हुकूमत चलाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दे दी गई थी इसको, वो तमाम रिसोर्सेज दे दिए गए थे जो दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को चलाने के लिए हो सकते हैं, और इसको अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें भी दे दी थीं कि जो वाकई बाद में इसके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई, और उसी के ज़रिए उसने रब को राज़ी किया। और यहाँ सबबा का जो लफ्ज़ है तो ये सीन बा और बास है, सबब उर्दू में बोलते हैं, इस बात का सबब क्या है, रीज़न क्या है? तो रस्सी क्या होती है? रीज़न होती है, मीन होता है, दो लोगों के बीच में एक सबब होता है, मिलाने वाली चीज़। लफ्ज़ी मानी इसके रस्सी के होते हैं, लेकिन ज़रिया और वसीला जो मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर यहाँ सबबन से मुराद ऐसे साजो सामान और वसाइल मुहैया किए जिनसे काम लेकर इसने फतूहात हासिल की। वो कौन कौन से थे आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनको अल्लाह ताला ने लोहे के ज़रिए से पिघला के उसके एक दीवार बनाने की मदद की, और कुछ ऐसी मीन्स थे, अल्लाह बेहतर जानता है कि उस दौर में कोई कम्युनिकेशन के वे होंगे, क्योंकि इतनी जगह सफ़र कर रहा था तो पैदल तो नहीं करता होगा ना। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्तों पे बिठा के सैरें कराईं, और ये सारे मामलात हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला के लिए क्या बड़ी मुश्किल है कि उस दौर में उस दौर के मुखालिफ कोई ऐसी चीज़ तैयार करके इसको दे दी होगी कि जिस पे वो बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इसी तरह सबब का एक दूसरा मानी भी बताया गया जो आगे आए कि फ़अत बा सबबा, वो एक राह के पीछे लगा। यहाँ देखिए कि सबब का लफ्ज़ रस्सी के लिए नहीं, रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी एक रास्ते के पीछे लगा। और अगर सबब को वसीले के मानों में रखा जाए तो भी ठीक है कि उसने अल्लाह के अता करदा एक वसीले को इस्तेमाल किया, वो वसाइल, वो मीन्स, वो नेमतें जो उसके पास थीं उससे उसने दूसरे काम किए। गोया कि एक मुतहरिक बादशाह का तसव्वुर दिल में आता है। ज़ुल्करनैन था वो किस तरीके से अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुकने वाला था, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बस कहते हैं कि ये ईरान का बादशाह भी था। ज़ुल्करनैन का लफ्ज़ जो है ये अरबी लफ्ज़ है, बस कहते हैं कि यमन के बादशाह को भी ज़ू के साथ लक़ब दिया जाता था, जैसे आप देखेंगे ज़ू नवास, ज़ुन्नून, ज़ुरऐन, तो इसी तरह ज़ुल्क़रनैन भी है। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस पे बात की है, क्योंकि अमूमन जो चीज़ें लोगों की तवज्जो लेती हैं वो ऐसी ही चीज़ें लेती हैं कि जिससे नामों पे बात होने लगती, कैसा क्यों हुआ और इसका क्या काम था। और बाज़ लोगों ने कुछ तारीखी वाक़यात को जमा करके पूरी एक हिस्ट्री भी मुरतब की है, लेकिन हमारे लिए भी बस इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसको मीन्स दिए, ये उस मीन्स पे चला और उसके बाद रास्ते में फिर कुछ काम भी करता गया। और वो क्या हुआ, हत्ता इज़ा बलग मगरिब शम्सी वजदहा, यहाँ तक कि जब वो सूरज ग़ुरूब होने की जगह पे पहुँचा तो उसने उसको पाया। हाँ, क्या है, सूरज, सूरज के ग़ुरूब होने की जगह पर पहुँचा तो उस सूरज को कहाँ पाया, एक दलदल के पास, तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीयतिन, जो ग़ुरूब हो रहा था एक चश्मे में। सूरज जब बिल्कुल करीब से आप देखें ना, जहाँ ग़ुरूब होता है, और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे नीचे एक गहरी सी चीज़ है और उस पानी में सूरज चला गया, दूर से सूरज को डूबता हुआ देखें तब भी यही एहसास होता है कि ये नीचे जा रहा है। और कहाँ वो सूरज अगर बहुत करीब, यानी ऐसा लगता है कि दुनिया का बहुत वेस्ट का हिस्सा था, कि जहाँ जाके सूरज डूबने लगता है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कीचड़ है, कोई दलदल है। हमिया जो है ये वही लफ्ज़ है जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में हमा इम मसनून में गुजर चुका। हमा किसको कहते हैं, कीचड़ को। यानी करीब से देखा तो ऐसा लगता था कि वो एक चश्मा है, ऐन से मुराद यहाँ चश्मा या समंदर भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े सूरज के आगे समंदर तो वाकई एक छोटा सा चश्मा ही दिखता होगा ना। और हमिया कीचड़ या दलदल, वजदा पाया यानी देखा, महसूस किया। कहते हैं कि मगरबी तरफ मुल्कों पर मुल्क फतह करता हुआ इस मुकाम पे पहुंचा, वहाँ दुनिया का एक आखिरी किनारा महसूस होता था, गदले पानी का चश्मा या समंदर था जो नीचे से बिल्कुल स्याह मालूम होता था, और ऐसे लगता था कि जैसे सूरज इस चश्मे में डूब रहा है और इसे आगे कुछ भी नहीं है। मैं इन आयतों को आज पढ़ रही हूँ तो एक चीज़ मेरे तसव्वुर में ताज़ी हो रही है। कुछ महीने पहले हमें कुछ एक ऐसी जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ था कि जो दुनिया का एक इंतहाई किनारा महसूस किया जाता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ जाके भी मुझे ये आयात याद आई थी कि शायद कोई ऐसी ही जगह होगी कि जहाँ ज़ुल्क़रनैन ने जाके कुछ दीवार बांधी होगी, कि जहाँ आबादी कम है और बिल्कुल एक वीराने की सी कैफियत है। और यकीन करें कि ऐसी जगहों पे जाके इंसान बहुत कुछ सीखता है, अल्लाह ताला के साथ क़ुर्ब महसूस होता है। फिर जब आपकी सोच अच्छी होती है तो फिर आप इन चीज़ों को भी अपने लिए फ़ायदा मंद महसूस करते हैं, और फिर इस तरह से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितनी मुख्तलिफ ही बनाया है। कभी आप बागों में जाते हैं तो फूल ही फूल खिले, वहाँ जाके एक रौनक का एहसास होता है। कभी आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ लंबे चौड़े पहाड़ी सिलसिले होते हैं, और बास जगह फिर आप बिल्कुल वीरानों में निकल जाते हैं, कहीं डेजर्ट्स में निकल जाते हैं, कहीं समंदरों में निकल जाते हैं। ये चीज़ें जितना इंसान के दिल को पकड़ती हैं, वाकई उस वक्त जाके इंसान को महसूस होता है कि इस इतनी बड़ी कायनात में मेरा क्या मुकाम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटी सी मखलूक हूँ, और मेरा रब जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है फिर वो कितना आला होगा। यही चीज़ इस वाक़े में भी आप बार बार महसूस करेंगे कि यहाँ तो वो ज़मीन के एक कोने में है जहाँ सूरज डूब रहा है, और वहाँ एक कौम पाई, वजदा इंदहा कौमन, वहाँ उसने एक कौम को पाया, कोई लोग होंगे जो वहाँ रहते थे। अब क्या होता है उस कौम के साथ, कुलना या ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन नत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, ए ज़ुल्क़रनैन, या तो तू इन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या इनके बारे में कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करें। अब ये कौम कौन थी, वहाँ जाके उस कौम के ऊपर ऐसा मामला क्या हुआ। बास कहते हैं कि ज़ुल्क़रनैन ने उस इलाके को फतह कर लिया, जैसे कोई भी फातह किसी कौम को फतह कर लेता है, किसी इलाके को, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कैदी बन जाते हैं। अब चॉइस दे दी कि या तो कत्ल कर लो या कैदी बना दो या फ़दिया लेकर बतौर एहसान छोड़ दो, जो भी तुम करना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी है, एहसान कर दो, पैसे ले लो या फिर कत्ल कर दो। तो अब इसका जवाब सुनिए कितना खूबसूरत है, काला अम्मा मन ज़लमा फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت سزا دے گا. اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یہ ہے ذوالقرنین کا وہ کردار جس کی وجہ سے اس کو عادل اور منصف بادشاہ کہا جاتا ہے. جب اس نے اس قوم کو فتح کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کوچک کی آخری حد تھی، یعنی ایشیا کے بالکل آخری کونے کی حد تھی جس کے آگے بالکل سمندر ہے اور چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کرتا ہے. وہاں جا کے یہ سارا منظر اس کو لگا کہ واقعی پانی کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. قوم جو تھی وہ جاہل تھی اور کافر تھی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ان کے ساتھ جو مرضی چاہو کر لو، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں ایسے ہی نہیں ظلم کروں گا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو تبلیغ کی، اسلام کی طرف بلایا، اور کہا کہ اگر تو کوئی میری تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی اکڑ جاتے ہیں اپنے کفر پہ ظلم میں تو پھر اس شخص کو موت آئے گی اور سختی کا ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، اور پھر کل اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. یہ ہے ایک اچھے اور منصف بادشاہ کا طرز عمل. امت مسلمہ یا تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی مسلمان حکمران بن کے گئے انہوں نے ایسے ہی جا کے وہاں دابڑ دور حملے نہیں کر دیے اور لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش نہیں کر دی، بلکہ کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خیبر کی قلعے کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ علی، وہاں جا کے پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو کچھ نہ کہنا اور واپس آ جانا، کہ یعنی دعوت دینا زیادہ بہتر ہے مارنے سے، اس لیے کہ ایک شخص بھی تمہاری دعوت سے اگر اسلام پہ آ جائے گا تو پھر یہ تمہارے لیے سر خون ٹھونک کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر فاتحین کا یہی مزاج ہو تو دنیا کے نقشے پہ کسی کو جنگیں بری نہ لگیں، کوئی کبھی بھی کسی حکمران کو آگے آنا ناپسند نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے آئے، آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، آپ نے لوگوں کو موقع دیا، انہوں نے خوب اچھی طرح اپنی ساری چیزوں کو دیکھ بھال لیا، ان کو جو حج کے بعد 4 مہینے تک کی مہلت دی گئی، خوب اچھی طرح دین سمجھ لو، سیکھ لو، یعنی 8 ذی الحج میں مکہ فتح ہوا، 1 سال تک وہاں مہلت دی گئی، پھر اگلے سال جب 9 ہجری کا سال آیا، اس سال حج کے موقع پہ پھر اعلان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو دین تو 4 مہینے ہیں اب تمہارے پاس، سیکھ لو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تم ان 4 مہینوں میں نہیں سیکھتے تو پھر اس کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتے. یہی ہے مزاج، یہی ہے فاتحین کا اعلیٰ مزاج، کہ جب وہ قوموں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں تو ان کے مقدر کے بادشاہ نہیں بن جاتے، ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں کر لیتے کہ بس اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی اور بس ہم نے کہہ دیا اب ہم ان کو ماریں کریں نہیں کریں، ایسا نہیں ہے. اول تو اسلام میں اس طریقے سے صرف زمین اور جگہ لینے کے لیے لڑائی کرنا اور جھگڑنا اور لوگوں پہ زیادتی کرنا یہ پسندیدہ ہی نہیں، لیکن اگر کسی موقع پہ ایسا ہوتا بھی ہے تو جو بے گناہ شہری ہوتے ہیں ان کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے اگر ان کو اسلام کی دعوت دے دی جائے تو وہ چیز انشاءاللہ تعالی اس پوری بستی اور اس پورے علاقے کے لیے ایک رحمت بن سکتی ہے. یہی بات یہاں دیکھی گئی کہ اس نے لوگوں کو جا کے نصیحت کی اور پھر وہ اس بات سے مان گئے تو ان کو خوشخبریاں دیں، اور جو نہ مانے تو کہا پھر ان کو تو کل رب کا عذاب آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دینی معاملات کے لیے بھی کیوریس ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے دور حکومت میں لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جس دین پہ اسی میں رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ مذہبی آزادی ہے، इस आज़ादी का ये मतलब है, सिंपल बात है कि अगर कोई शख्स किसी का बादशाह है तो उससे एक एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। वो लोगों को मजबूर नहीं कर सकता उनका दीन बदलने के लिए, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इस्लाम को राज करना तो उसकी जिम्मेदारी है, और अगर कोई उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो फिर उसके बाद फिर उनसे एक सख्त मामला भी कर सकता है। यह एक सवाल पैदा होता है सूरज के गरूब होने के बारे में कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो वो कहाँ जाता है। आज के दौर में चूंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने बढ़ गए कि हम फौरन कह देंगे कि जब इधर से गुरूब होता है तो वो दुनिया के दूसरे हिस्से में निकल आता है, लेकिन सहाबा कराम तो ये सारी चीज़ों को नहीं देख पाते थे। तो एक मौके पे ऐसा हुआ, हज़रत मुआविया ने हज़रत काब के पास एक आदमी भेजा कि बताओ सूरज कहाँ गरूब होता है, तौरात में उसके बारे में क्या है, क्योंकि ये जो काब थे ये तौरात के आलिम थे। काब ने जवाब दिया कि इसे अरबियत वालों से पूछना है, वही इसके पूरे आलिम है, यानी जिनको अरबी आती है उनसे पूछो। हाँ, तौरात में तो मैं ये पाता हूँ कि वो पानी और मिट्टी में यानी कीचड़ में छुप जाता है, और मग़रिब की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। और बाकी अगर आप देखें तो जब सूरज डूबता है तो वो ग्लोब के एक पीछे चला जाता है ना, एक अंदाज़ से देखा जाए तो ये बात ऐसे कुछ लगती है बात बनती हुई। फिर कहते हैं कि ये किस्सा सुनकर इब्ने हाजिर ने कहा, अगर मैं उस वक्त होता तो आपकी ताईद में तुब्बा के वो दो शेर पढ़ देता जिसमें इसने ज़ुल्करनैन का जिक्र करते हुए कहा कि वो मशरिक और मगरिब तक पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे हर किस्म के सामान मुहैया फरमाए थे। इसने देखा कि सूरज स्या मट्टी जैसे कीचड़ में गरूब होता है। तो बहरहाल कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला ने अपने ग़ुलाम से या किसी और शख्स से फरमाया, जो ये कहते हैं इसको लिख लो। इसी तरह एक मरतबा इब्ने अब्बास से सूरतुल कहफ की तिलावत हज़रत काब ने सुनी, तो जब आपने हमिया पढ़ा तो कहा, वल्लाह जिस तरह तौरात में है इसी तरह पढ़ते हुए मैंने आप ही को सुना, कहनी तौरात में भी ऐसे ही लिखा है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कोई तब्दीली का फ़ायदा नहीं होता, तो वो चीज़ें आज भी तौरात में मौजूद होंगी। एक जहन में चीज़ आपके भी आ चुकी होगी कि अहले किताब ने अपनी किताबों में तब्दीलियाँ की थी अहकामात में, क्योंकि उस पर अमल करना मुश्किल लगता है ना इंसान को, अच्छा ऐसे नहीं करें वैसे करें। इसके अलावा अगर दुनिया के इब्तदा की कुछ बातें हैं, पैगंबरों की अगर कोई सही बातें हैं जो उनके अमल पे नहीं जद डालती थी, या क़यामत की कोई जिक्र है, तो वो दुरुस्त हो भी सकते हैं। इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। यहाँ देखिए कि अब ज़ुल्करनैन की जो पहली मुहिम थी वो पूरी हुई, तो हमारे लिए इसमें अमल की बात यही निकली। ऑफ कोर्स हम सब बराह रास्त तो इस पे अमल नहीं करने वाले कि हम किसी मुल्क की हुक्मरानी को पाएँ और फिर वहाँ लोगों की तरबियत का अहतमाम करें, लेकिन हम में से हर एक के लिए मैदान खुला है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि तुम में से हर एक राई है अपने घर वालों पे, अपने लोगों पे। तो अगर हम सब कुरान पाक को सुनकर अगर ये बात सोचें कि जहाँ भी हम रहते हैं हमारे असर व रसूख में जितने भी लोग मौजूद हैं वो इसी बात की रोशनी में हमारी तरफ से इस चीज़ के मंतज़र हैं कि हम उनको दीन की दावत दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये दावत देना हमारा फ़र्ज़ भी होगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि किसी को फ़ायदा हो। यहाँ एक और बात पे मुफस्सरीन ने बात की, कुलना हमने कहा। तो लोग पूछते हैं कि ज़ुल्करनैन से अल्लाह ने ख़ुद कैसे कहा, इसीलिए फिर बाज़ लोग सोचते हैं कि ये नबी था, क्योंकि नबी ही हैं जिनको मुखातिब किया जाता है। तो आप देखिए कि इसके बारे में मुफस्सरीन ने फिर ये बात का जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला ने ये बात वही या इल्हाम के ज़रिए से ज़ुल्करनैन को कही हो और इससे पता चले कि वो नबी हैं। बाज़ बातें ज़ुबान हाल से भी कह दी जाती हैं। ज़ुबान क़ाल क्या होती है, कौल से कह के कोई बात कहना। कुछ बातें हाल के ज़रिए से भी बता दी जाती है, यानी सरकमस्टांसिस ही ऐसे बन जाते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त उसके ज़मीर के अंदर ये सवाल हो कि देखो ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुमने जुल्म किया तो तुम कर सकते हो, हर हुक्मरान के आगे ये बात मौजूद होती है, और अगर जुल्म ना करो शराफत का सलूक करो तो ये तुम्हारे ही हाथ में है। तो बहरहाल हर बंदे के अंदर एक पुकार तो ज़रूर आती है हर मुख्तलिफ मौके पे, ये करूँ कि ना करूँ, और ऐसी पुकारें हर इंसान को अपनी सुननी भी चाहिए। जो इसको सुन लेता है फिर वो जुल्म से बच जाता है, लेकिन जो इसको दबा के अपनी ताकत के नशे में आगे रहते हैं, फिर वो लोग तो दुनिया में अमूमन जुल्म और ज्यादती करते देखे गए। यहाँ से एक और चीज़ भी पता चलती है कि ज़ुल्करनैन का आखरत का अकीदा दुरुस्त था। तभी तो कहा कि हम तो इनको छोड़ देंगे, लेकिन फिर कल अल्लाह के पास इनकी पकड़ होगी। और जो आमन वामिला सालेहन फलहु जज़ा निल हुस्ना, उसके लिए दुनिया की भी बेहतरी और आखरत की भी है। इन्हीं बातों से फिर लोगों ने इसको मुसलमान बादशाह करार दिया। उम्मा अतबा सबबा, अगर आप यहाँ नंबर 2 डाल लेंगे तो इंशाल्लाह वाज़े होगा। 3 मुख्तलिफ ट्रिप्स हैं इस पूरी वाक़े में ज़ुल्करनैन के नाते से। पहला हम सुन चुके, अब दूसरा सुनेंगे। एक और दूसरे मुल्क जाता है, एक दूसरा ट्रेवल है उसका। क्या हुआ? हत्ता इज़ा बलग़ मतलिया शम्सी वजदहा तत्लु अला कौम लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। फिर वो एक और राह पर चल पड़ा, हत्ता के वह तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचा। इसे ऐसा मालूम हुआ कि सूरज ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है कि सूरज और इस कौम के दरमियान हमने कोई आड़ नहीं बनाई। कज़ालिक वक़द अख़तना बिमा लदैही खुबरा। वाक़या ऐसा ही था, और ज़ुल्करनैन को जो हालात पेश आए इसे हम खूब जानते हैं। ये है इसका दूसरा सफ़र। ये दूसरा सफ़र इसका मशरिक़ की तरफ था, ईस्ट साइड पे के इलाक़ों को फतह करते करते वहाँ पहुँच गया कि जहाँ महज़ब दुनिया ख़त्म हो जाती है, जंगली किस्म के गैर महज़ब लोग हैं जिनको घर भी बनाने नहीं पड़ते, सूरज की गर्मी या बारिश से बचने के लिए उनके पास खेमे होते हैं, हल्के फुल्के लेके इधर से उधर चल पड़ते हैं, या वो पहाड़ों की गारों और खोहों में रहते हैं, सूरज की तपश या बारिश वगैरह को बर्दाश्त करने के आदी हो चुके होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसे है कि लिबास से भी महरूम है। देखिए कि आज हमने भी कितनी को दुनिया देखी है। इसी दुनिया में आप देखेंगे तो आपको इतने मुख्तलिफ रंग दिखेंगे, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जिनको हमने देखा ही नहीं। टीवी पे, मीडिया में, इंटरनेट पे आप जो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अगर कभी देखते हैं तो वो तो वहीं तक की होंगी ना जहाँ मीडिया के असरात हैं, जहाँ तक कैमरे जा सकते हैं, जहाँ लोग जाते हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि इस दुनिया में आज भी इंसानों की कसरत हो कि जिन तक आज किसी कैमरे की निगाह नहीं गई, ज़मीन के कोनों में छुपे हुए। अब जब उनके पास मीन्स नहीं है, उनके पास कपड़े की फैक्ट्रियां नहीं हैं, उनके पास बाकी सब चीज़ें नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? बाकी भी ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं होती होंगी। तो बिल्कुल जैसे जंगलों में खुद रौ जानवर रहते हैं, इसी तरह कुछ इंसान भी रहते होंगे। तो यहाँ भी कुछ एक ऐसा ही मामला लगता है कि जब ये वहाँ गए तो अब यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कज़ालिक बोला। बाज़ ने कहा कि कज़ालिक क्यों बोला? कज़ालिका, इसके दो मतलब हैं। कज़ालिका का मतलब क्या है? एक तो मतलब ये है कि दूसरे लोग, यानी जो तारीख़ लिखने वाले लोग होते हैं, हिस्टोरियंस, मुअर्रिख़, वो चाहे ज़ुल्करनैन के कोई भी हालात बता दें, लेकिन असल वाक़या वही है जो हम बयान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ज़ुल्करनैन को क्या क्या हालात पेश आए और इसके पास क्या कुछ मौजूद था, ठीक है। और कज़ालिका का दूसरा एक मतलब है क्या? कि ज़ुल्करनैन ने इस कौम के साथ भी वही मामला किया जैसा कि मग़रबी कौम के साथ किया था, ठीक है। पहले वेस्ट में गया तो उसका वही तर्ज़ अमल था, अब ईस्ट में आ गया तो वही मकसद है, यानी इस्लाम की दावत। बस कज़ालिक के लफ्ज़ आगे कौम है, अब देखेंगे तो ये डली हुई है, बस वही किया जो पीछे किया था। इस्लाम की तालीम दी, उनको दावत दी, जिन लोगों ने सरकशी की उनके साथ सख्ती की गई, और जिन्होंने फरमा बरदारी की राह अख्तियार की उनसे नरमी का सलूक किया। इससे क्या पता चलता है? कि जो मुनसिफ मिजाज होते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाएं, उनके रवैये नहीं बदलते, उनके मुख्तलिफ कानून नहीं होते। ईस्ट में रहने के कोई और कानून, वेस्ट में जाएंगे तो कोई और कानून, बल्कि वो हर जगह अच्छे होते हैं। हज़रत यूसुफ़ के वाक़े में भी हमने ये बात बहुत तफसील से देखी थी कि वो लोग जो मुहसिन होते हैं ना, वो जेल में भी चले जाते हैं तो उनका वही रवैया होता है जो उनका रवैया तख्त पे बैठने से होता है। वो ग़ुलामी में हो तब भी और हुक्मरानी में हो तो तब भी। और किसी इंसान की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो हर जगह हर वक्त एक ही जैसा रहे, हम सब अपने लिए देखें, क्या हमारे मेयार फ़र्क होते हैं? घर वालों के साथ हम कैसे रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और बाहर वालों के साथ कैसे करते हैं? बाज़ दफ़ा घर वालों से बात करने के दौरान ही कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो तब भी हमारा हाल क्या होता है? शर्मिंदगी होती है। बाज़ दफ़ा अपने जोम में हम बात कर रहे हैं और बाद में पता चले कोई बाहर का बंदा बैठा है तो झीपने क्यों लगते हैं? इसी वजह से कि दो मुख्तलिफ टोन्स हैं, दो मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है कि जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ याद रखने को नहीं होता, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा होता है वो उसके सामने होता है। इसके बरक्स जब इंसान झूठा लाइवलीहुड इस्तेमाल करता है, झूठा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करता है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसको मुख्तलिफ वक्त पे याद रखनी पड़ती हैं।
وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا